मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग कृषि कानूनों के बारे में बात करेंगे, जिसकी वापसी की घोषणा सरकार ने की है। लेकिन इससे पहले मैं एक समाचार के बारे में आप सबसे जरूरी बातें करना चाहूंगा। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया है, खासकर पॉक्सो एक्ट को लेकर, और ये आपके लिए सिलेबस की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण डिसीजन है। खासकर मैं बार बार आप सबसे ये बात कह रहा हूं कि जब भी आपको कोई न्यूज पढ़ने को मिलते हैं, एडिटोरियल कमेंट्स या आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं, तो आप खासकर ये देखिए कि वो आपके सिलेबस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिलेबस में तो देखिए हालांकि हर चीजें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्हें समझना ही पड़ेगा। जैसे ये पॉक्सो एक्ट है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है, तो ये 2012 में बना था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो बच्चों के प्रति जो यौन उत्पीड़न होता है और बच्चों को पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों में जो बच्चे लिप्त हो जाते हैं, उन सबको रोकने के लिए लाया गया था 2012 में, राइट। फिर अब एक्ट चल रहा है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इससे पहले एक डिसीजन दिया और वो डिसीजन यह था कि अगर किसी का कॉन्टेक्ट बच्चे के साथ स्किन टू स्किन नहीं हुआ है तो वह अपराध नहीं है। मतलब स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होना, संपर्क होना आवश्यक है, तभी हम उसे यौन अपराध मानेंगे। ये लगभग उसका ये कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे उलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इसका मतलब यह है कि अगर बच्चे के साथ कोई अपराध करना चाहता है, यौन अपराध करना चाहता है, और उसने अपने हाथ में दास्ताने पहन लिए हैं, तो दास्ताने पहनने के बाद उससे उसके शरीर से संपर्क तो होगा नहीं सीधे से आपके शरीर का, तो फिर तो वह अपराध नहीं हुआ। तो उसने सीधे सीधे इसे रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि नहीं, जो पॉक्सो एक्ट की धारा 7 है। बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा इसे कुछ रेफरेंसेस आपको नोट कर लेने चाहिए। यह रेफरेंस मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। पॉक्सो एक्ट की धारा 7, उसके तहत ऐसा नहीं है कि स्किन टू स्किन संपर्क यदि नहीं हुआ है तो उसे यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बाकायदे वह भी यौन उत्पीड़न के अंतर्गत ही आएगा, भले ही स्किन टू स्किन संपर्क न हुआ हो, क्योंकि जो धारा 7 है उसका संबंध यौन हिंसा के इरादे से है, इंटेंशन से है, और अगर इंटेंशन गलत है तो वह यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। ये आपको अपडेट कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है कृषि कानूनों की वापसी को लेकर। इसके बारे में अखबारों में आपको बहुत कुछ पिछले 2-3 दिनों से पढ़ने को मिल रहा है, और डेफिनेटली मिलना भी चाहिए क्योंकि बहुत ये बड़ी बात, एक बड़ी घटना घटित हुई है। इस बीच में आपको अखबारों के शनिवार को जो हम लोगों ने क्लिपिंग्स प्रोवाइड किए थे उनकी संख्या काफ़ी थी, और अभी कुछ दिनों तक इस तरह की क्लिपिंग्स आपको मिलती रहेंगी, और खूब क्लिपिंग्स मिलेंगी। इतनी क्लिपिंग्स मिलेंगी कि आपको ये लगने लगेगा कि इसमें से हम क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें, किसको लें किसको समझें, है ना, परेशानी होने लगेगी। तो आज मैं उस परेशानी से बचाने के लिए कुछ पगडंडियां आपको बता रहा हूं। राजमार्ग तो देखिए बताना मुश्किल है, लेकिन पगडंडियां मैं जरूर बता सकता हूं ताकि आप फोकस्ड तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकें, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि आप कितना भटक भटक करके प्रिपरेशन करेंगे, या इस भय से कि ये भी ना पूछ लिया जाए, ये भी ना पूछ लिया जाए, ये भी ना पूछ लिया जाए, कितना बोझ लाद कर चलेंगे। वियावान जंगल में बिना दिशा बोध के यात्रा करना कहीं आपको पहुंचाएगा नहीं, तो ये लगभग उसी तरह से हो जाता है। तो मैं आज आपको कृषि कानूनों में क्या था, क्या नहीं था, क्यों किया गया, इन सब के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं। अखबारों में आप सब पढ़ चुके हैं, अगर आपने टीवी चैनल्स पर डिस्कशन सुने होंगे तो वहां भी दिखाया जा चुका है, उनका अब कोई अर्थ नहीं है दोहराने का। मैं आपको अब दूसरी तरह से कुछ बातें बताने जा रहा हूं। पहली बात कि जब भी कोई घटना घटित होती है, चाहे वह विशुद्ध रूप से राजनीतिक घटना क्यों न हो, आपकी जो दृष्टि है वह राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, वह संवैधानिक होनी चाहिए। मैं समझ रहा हूं कि शायद आप मेरी बात को पकड़ रहे होंगे। राजनीतिक और संवैधानिक में क्या फर्क है, इसे आइए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे अभी आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने, जिसको लेकर के आंदोलन हो रहा था कृषि कानूनों को लेकर के, और घोषणा की कि ये कृषि कानून हम वापस लेंगे, और वापस लेने के लिए चूंकि अब कानून बन चुका है तो डेफिनेटली फिर से पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रहा है, तो इसमें कृषि कानून वापस हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की, ठीक है। बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, एक साल तक आंदोलन चला है, तो वो घटनाएं काफी आपने पढ़ी कि इतने किसान मारे गए, इतने वो हो गए, इधर उधर बहुत सारी बातें उसमें हो रही हैं। दोस्तों अब इसको लेकर के राजनीतिक दृष्टि क्या है, राजनीतिक दृष्टि के तहत आप लोग, आपने विपक्ष या जो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो बीजेपी और अलायंस गवर्नमेंट के हिस्से नहीं है, उनका स्टेटमेंट आप लोग आपने सुना होगा कि अरे अरे अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, पंजाब में चुनाव होना है, तो सरकार घबरा गई कि वहां हम हार न जाएं, तो इसलिए उन्होंने ये किया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव भी इसमें शामिल है कि कहीं 2024 में जो संसद के चुनाव होने हैं उसमें कहीं हमें पराजय न मिल जाए। इस तरह की बातें हो रही हैं, ये राजनीति है, ये राजनीति है। तो संविधान क्या है, संवैधानिक क्या है? देखिए, जब आप विशुद्ध रूप से राजनीतिक दृष्टि से घटनाओं को देखते हैं तो फिर आप एक राजनेता बन जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि एक पार्टी मेंबर बन जाते हैं, लेकिन आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, और सिविल सर्वेंट के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि वो किसी पार्टी में नहीं है, वो सरकार में है, है ना। सरकार उसको निर्देशित करती है कि ये करना है, और वो नियम कानून के तहत उन दायरों में रह करके वो उन निर्देशों का पालन करता है। ये बहुत स्पष्ट विभाजन है, कार्य प्रणाली है। मैंने कहा कि आपको राजनीतिक दृष्टि न रख करके संवैधानिक दृष्टि रखनी है। अब इसको आप डेमोक्रेसी के आधार पर सोच करके देखिए, जनता को वोट देने का अधिकार है, वो सरकार चुनती है, और हर 5 साल में वो ऐसा करती है, तो 5 साल में जो उसे हर बार वोट देने का जो अधिकार है, ये उसकी नियंत्रणकारी शक्ति है, उसके द्वारा वो सरकार को नियंत्रित करती है। ठीक है, हमें आपका काम पसंद नहीं आया, हम बदल देते हैं, खत्म हो गई बात। तो अगर किसानों ने अपने आंदोलन के जरिए सरकार को इस बात के लिए, यूं कह लीजिए चलिए, मजबूर किया कि आप अपना कानून वापस लीजिए, और सरकार ने वापस लिया, तो संवैधानिक दृष्टि से ये लोकतांत्रिक शक्ति की विजय है। जो अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप होते हैं उसी में एक प्रेशर ग्रुप किसानों का है। किसानों ने आंदोलन के जरिए सरकार पर इसका दबाव डाला, क्योंकि उनका यह मानना था कि ये जो कानून है ये हमारे हित में नहीं है, और सरकार ने भी बकायदे उनके फिर इस मत का आप कह लीजिए कि स्वागत करते हुए वो कानून वापस ले लिए। तो यही तो लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। तो जब संवैधानिक दृष्टि से आप इसे जानने समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी भाषा बिल्कुल बदल जाएगी। क्या आपको नहीं लगता है कि कंटेंट भी बदल गए हैं, सब कुछ बदल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे मुद्दे जहां भी जब भी आते हैं तो प्लीज आप इस लाइन को नोट कर लीजिए कि आपकी जो दृष्टि है वो राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, आपकी दृष्टि संवैधानिक होनी चाहिए, राइट। यहां अब मैं कुछ आपको वाक्य वो बता रहा हूं या कुछ प्रश्न बता रहा हूं जिनके आप यूं कह लीजिए कि पूछे जाने की संभावना हो सकती है। वैसे देखिए ये आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है, अगर हम पिछले साल के 1-2 साल के क्वेश्चंस पेपर को देखें तो कृषक आंदोलनों को लेकर के कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। हाँ, कृषि व्यवस्था से संबंधित प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, हालांकि ठीक है कृषि आंदोलन भी कहीं ना कहीं कृषि व्यवस्था से ही जुड़ी हुई बात है, लेकिन फिर भी स्पष्टता के लिए जरूरी है कि हम थोड़ी देर के लिए आंदोलनों को किनारे कर दें और इससे जुड़े हुए जो दूसरे मुद्दे हैं या जो उभर कर आते हैं उन्हें हम देखें। उदाहरण के तौर पर अब क्या क्या मुद्दे इससे उभर करके आए हैं। पहला जो मुद्दा उभर करके आता है वो ये है कि सरकार जब कानून बनाती है तो कानून बनाने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। अखबारों में आपने पढ़ा होगा और जो सही भी है कि जो कृषि कानून बने, कृषि कानून संवैधानिक दृष्टि से तो बिल्कुल सही सही बन गए, है ना। पार्लियामेंट में पेश किया जाना चाहिए, फिर लोकसभा उसे पारित करे, फिर राज्यसभा उसे पारित करे बहुमत से, फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे, ये सारी बातें तो हो गई। लेकिन जिस तरीके से इसे पारित किया गया, जितनी जल्दबाजी में पारित किया गया, उसे देखते हुए पूरे के पूरे देश के मन में कहीं ना कहीं संदेह की भावना पैदा हो गई। कैसे? सबसे पहले तो ऑर्डिनेंस लेकर के आया गया, अध्यादेश लेकर के आया गया, जबकि अध्यादेश बहुत ही अर्जेंट मामलों में लाया जाता है, तो इसमें कोई ऐसी अर्जेंसी तो थी नहीं कि आप अध्यादेश ले आए तुरंत, ये प्रश्न उठाया जा रहा है। दूसरा यह है कि जिस तरीके से हड़बड़ी में इसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कराया गया, कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, वो भी फिर दिखाता है, क्योंकि कोरोना का पीरियड था आपको मालूम है, तो वो भी दिखाता है कि इस पर जो दूसरे लोग हैं, देखिए हमारे सरकार में जो सांसद हैं वो सरकार के हिस्से हैं, मान लीजिए कि 540 हैं और उसमें सरकार के सांसद 300 हैं, तो 240 तो दूसरे भी सांसद हैं ना, वो सांसद भी तो देश के ही भाग से आए हुए हैं। 300 को अधिकार है, ये कानून बना रहे हैं, लेकिन 240 के मतों की उपेक्षा तो आप नहीं कर सकते। अगर उनके मतों की आप उपेक्षा कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हिंदुस्तान के उतने बड़े भाग को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। व्यावहारिक स्तर की बात कर रहा हूं मैं। तो चूंकि इस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई, विपक्ष दल के जो लोग थे उन्हें ज्यादा सुना नहीं गया और पारित कर दिया गया, तो ऑर्डिनेंस लाया गया और फिर हड़बड़ी में इसे पारित किया गया। तो हुआ यह कि फिर जब यह कानून बन गया तो पूरा का पूरा जो विपक्ष था इसके विरोध में खड़ा हो गया। यहां तक कि जो सरकार में जो अकाली दल है, उस अकाली दल का यह कहना कि हमसे इसके बारे में कुछ नहीं पूछा गया, तो फिर आपको मालूम है कि कुछ ही समय के बाद अकाली दल ने सरकार छोड़ दी। तो ये जो प्रक्रिया है जो व्यावहारिक स्तर पर, इसमें खामी दिखाई दे रही है कि न तो पॉलिटिकल पार्टी की भागीदारी हुई और न ही उनकी भागीदारी हुई जिनके लिए आप कानून बना रहे हैं। यानी कि किसानों से भी ऐसा नहीं कि कोई पूछा गया हो और पब्लिक डोमेन में कानून को डाल दिया गया हो कि भाई हम ऐसा बनाने जा रहे हैं तो इसके बारे में आप अपनी राय दीजिए, ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो एक जो प्रश्न बनता है वो ये है कि कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस एक प्रश्न के साथ ही मुझे आज अपनी बात समाप्त करनी पड़ेगी, लेकिन इससे और जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम लोग कल बातें करेंगे। तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोग की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं फ्रेंड्स, 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में होने वाली हैं। उनके लिए रंजीत कुमार ने, जो नवादा बिहार से हैं, रजिस्ट्रेशन कराया है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ साथियों के नाम हैं ब्रिजेश सोनी, अनीशा वर्मा, अमृत नारायण सतपति भुवनेश्वर ओडिशा से, ज्योति प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, रवीना राय खपुरा बिहार से, राजकुमार लड्डा फरीदाबाद हरियाणा से, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, दीपक शोराण हरियाणा से, और अभिलाषा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।